नमस्कार, मैं घनश्याम मीना, परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय चार रावत भाटा, TGT हिंदी संस्कृत। आज आपके समक्ष कक्षा सात की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत के पाठ संख्या 25 मंत्रणा के विषय में चर्चा करेंगे। हमने पिछली कक्षा में पिछले पाठ के बारे में पढ़ा था विराट का भ्रम। अभी पांडवों का अज्ञातवास का समय पूर्ण हो गया और वे अब सभी उपलब्ध नगर में जाकर रहने लगे और अज्ञातवास की अवधि पूर्ण हो चुकी थी, इसलिए पांचों भाई प्रकट रूप से रहने लगे। आगे का कार्यक्रम तय करने के लिए उन्होंने अपने सभी भाई बंधुओं, मित्रों आदि को बुलाना प्रारंभ किया और उनके पास में दूत भेजे और वो उनसे ताकि मंत्रणा करे, विचार विमर्श करे। और इस प्रकार वहाँ पर श्री कृष्ण भी उपलब्ध नगर जा पहुँचते हैं, इंद्रसेन आदि राजा भी वहाँ पहुँचते हैं, तो काशीराज और वीर सैबी भी अपनी कई अक्षौणी सेना को साथ लेकर युधिष्ठिर के पास उपपल्लव्य नगर में पहुँच जाते हैं। पांचाल राज द्रुपद भी 3 अक्षौणी सेना लेकर वहाँ पहुँचते हैं। उनके साथ शिखंडी, द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न और द्रौपदी के पुत्र भी आ पहुँचते हैं और इस प्रकार अपनी अपनी सेनाओं को साथ लेकर पांडवों की सहायता के लिए वहाँ आ जाते हैं। सबसे पहले अभिमन्यु का विवाह उत्तरा के साथ किया गया और उसके बाद विराट राजा के सभा भवन में सभी आगंतुक राजा मंत्रणा के लिए इकट्ठे हुए। विराट के पास श्री कृष्ण और युधिष्ठिर बैठे हुए हैं, द्रुपद के पास बलराम और सात्यकी, और भी कितने ही प्रतापी राजा वहां सभा में उपस्थित थे। सभी अपने अपने विचार रखते हैं। युधिष्ठिर और राजा दुर्योधन के लिए जो भी उचित है उसके बारे में भी न्यायोचित बातें करते हैं और पांडव और कौरवों का श्रेयस बढ़े, इस प्रकार की बातें भी वहाँ की जाती है। तो वह सभी वहाँ चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से युद्ध ना हो, दोनों में संधि हो सकती है तो संधि के बारे में सबसे पहले विचार विमर्श किया जाए इस प्रकार। लेकिन दुर्योधन के पास में दूत भेजने का प्रस्ताव भी रखा जाता है जो उचित है, लेकिन बीच में ही बलराम बोलते हैं कि कृष्ण ने जो सलाह दी है वो न्यायोचित लगती है। आप लोग जानते हैं कि कुंती के पुत्रों को आधा राज्य मिला था, वे उसे जुए में हार गए, अब उसे फिर से प्राप्त करना चाहते हैं। यदि शांतिपूर्ण ढंग से बिना युद्ध किए वे अपना राज्य प्राप्त कर सके तो उससे न केवल पांडवों बल्कि दुर्योधन तथा सारी प्रजा की भलाई होगी। बलराम के कहने का सार यह था कि युधिष्ठिर ने जानबूझकर अपनी इच्छा से जुआ खेलकर राज्य गवाया था। उनकी इन बातों से सात्यकी को क्रोध आ जाता है और वो बीच में ही बोल उठते हैं और कहने लगते हैं कि बलराम जी की बातें मुझे न्यायोचित नहीं लगती है। युधिष्ठिर को आग्रह करके जुआ खेलने पर विवश किया गया और खेल में कपट से उसे हराया गया था। इस प्रकार सात्यकी की इन दृढ़तापूर्ण और जोरदार बातों से राजा द्रुपद भी बड़े खुश हुए। वे उठे और बोले, सात्यकी ने जो कहा है वो बिल्कुल सही है। राजा द्रुपद के कह चुकने के बाद श्री कृष्ण उठे और बोले, सज्जनों, पांचाल राज ने जो सलाह दी है वह बिल्कुल ठीक है। भैया बलराम जी और मुझ पर कौरवों का जितना हक है उतना ही पांडवों का भी है। हम यहाँ किसी का पक्षपात करने नहीं बल्कि उत्तरा के विवाह में शामिल होने के लिए आए हैं। अब हम सब अपने स्थान पर वापस चले जाएंगे। द्रुपद की ओर देखकर द्रुपद राज, आप सभी राजाओं में श्रेष्ठ और बुद्धिजीवी है, आयु में भी बड़े हैं, हमारे लिए तो आप आचार्य के समान हैं। धृतराष्ट्र भी आपकी बड़ी इज्जत करते हैं, द्रोण और कृपाचार्य तो आपके लड़कपन के साथी है, इसलिए उचित तो यही होगा कि जो कुछ दूत को समझाना बुझाना हो वे आप ही समझा दे और उन्हें हस्तिनापुर भेज दे। यदि इसके बाद दुर्योधन न्यायोचित रूप से संधि करने के लिए तैयार ना हो तो सब लोग सब तरह से तैयार हो जाएं और हमें भी वह सूचना भेजें। शांति चर्चा के लिए हस्तिनापुर को दूत भेजने के बाद पांडव और उनके मित्र राजागण जोरों से युद्ध की तैयारियों में जुट गए। श्री कृष्ण के पास अर्जुन स्वयं पहुंचा। इधर दुर्योधन को भी इस बात की खबर मिल गई कि उत्तरा के विवाह से निवृत्त होकर श्री कृष्ण द्वारका लौट गए हैं, सो वह भी द्वारका को रवाना हो गया। संयोग की बात है कि जिस दिन अर्जुन द्वारका पहुंचा, ठीक उसी दिन दुर्योधन भी वहां पहुंचा। श्री कृष्ण के भवन में भी दोनों एक ही साथ प्रविष्ट हुए। श्री कृष्ण उस समय आराम कर रहे थे। अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही उनके निकट संबंधी थे, इसलिए दोनों ही बेखटके शयनागार में चले गए। दुर्योधन आगे था, अर्जुन जरा पीछे। कमरे में प्रवेश करके दुर्योधन श्री कृष्ण के सिरहाने एक ऊंचे आसन पर जा बैठा, क्योंकि श्री कृष्ण सो रहे थे। तो अर्जुन श्री कृष्ण के पैताने ही हाथ जोड़े खड़ा रहा, यानी उनके पैरों की ओर ही वह हाथ जोड़कर खड़ा रहा। श्री कृष्ण की जब नींद खुली तो उन्होंने सामने अर्जुन को ही खड़े देखा, क्योंकि जो हमारे सामने होगा वही दिखाई देगा। तो दुर्योधन तो उनके पास में एक ऊंचे आसन पर बैठा हुआ था सिर की ओर, तो वो कैसे दिखाई देगा? जो सामने अर्जुन खड़ा था तो वही उनको दिखाई दिया। उन्होंने उठकर उसका स्वागत किया और कुशल पूछी। बाद में घूमकर आसन पर बैठे दुर्योधन को देखा तो उसका भी स्वागत किया और कुशल समाचार पूछा। उसके बाद दोनों के आने का कारण पूछा। दुर्योधन जल्दी से पहले बोला, श्री कृष्ण, ऐसा मालूम होता है कि हमारे और पांडवों के बीच जल्दी ही युद्ध छिड़ेगा। यदि ऐसा हुआ तो मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूँ कि आप मेरी सहायता करें। सामान्यतः यह नियम है कि जो पहले आए उसका काम पहले हो। आप विद्वजनों में श्रेष्ठ हैं, आप सबके पथ प्रदर्शक हैं, अतः बड़ों की चलाई हुई प्रथा पर चलें और पहले मेरी सहायता करें। यह सुनकर श्री कृष्ण बोले, राजन, आप पहले पहुंचे जरूर है, लेकिन मैंने तो पहले अर्जुन को देखा। मेरी निगाह में तो दोनों ही बराबर है, इसलिए कर्तव्य भाव से मैं दोनों की ही समान रूप से सहायता करूँगा। पूर्वजों की चलाई हुई प्रथा यह है कि जो आयु में छोटा हो उसी को पहले पुरस्कार देना चाहिए। अर्जुन आपसे आयु में छोटा है, इसलिए मैं पहले उससे ही पूछता हूँ कि वह क्या चाहता है। अर्जुन की तरफ मुड़कर श्री कृष्ण बोले, पार्थ सुनो, मेरे वंश के लोग नारायण कहलाते हैं। श्री कृष्ण के वंश के लोग क्या कहलाते हैं? नारायण। वे बड़े साहसी और वीर भी है, उनकी एक भारी सेना इकट्ठी की जा सकती है। मेरी यह सेना एक तरफ होगी, दूसरी तरफ मैं अकेला रहूँगा। मेरी प्रतिज्ञा यह भी है कि मैं युद्ध में ना तो हथियार उठाऊँगा और ना ही लड़ूँगा। तुम भली भांति सोच लो, तब निर्णय करो। इन दो में से जो आपको पसंद है वह ले लो, या तो मुझे ले लो या मेरी नारायणी सेना को ले लो, और साथ में मैं युद्ध भी नहीं करूँगा ना हथियार उठाऊँगा। बिना किसी हिचकिचाट के अर्जुन बोला, आप शस्त्र उठाए या ना उठाए, आप चाहे लड़े या ना लड़े, मैं तो आपको ही चाहता हूँ। दुर्योधन के आनंद की सीमा नहीं रही। वह सोचने लगा कि अर्जुन ने खूब धोखा खाया है श्री कृष्ण कि वह लाखों वीरों वाली भारी भरकम सेना को छोड़ करके उन्होंने श्री कृष्ण को चुना है, और जो भी निहत था और युद्ध में भाग भी नहीं लेगा। मालूम होता है कि उत्तरा के विवाह के अवसर पर मैंने जो कुछ कहा था उसकी खबर तुम्हें मिल गई होगी। कृष्ण से भी मैंने कई बार तुम्हारी बातें छेड़ी और उसको समझाता रहा। कौरव और पांडव दोनों ही हमारे बराबर के संबंधी हैं, किंतु कृष्ण मेरी बात सुने तब ना, तो बलराम भी क्या है, वहाँ पहुँचते हैं और श्री कृष्ण को समझाते हैं कि हमारे लिए कौरव और पांडव एक जैसे, हमें युद्ध में भाग नहीं लेना चाहिए। लेकिन कृष्ण मानने वाले नहीं हैं, बलराम को इस बात का दुख है और बलराम अपने भाई कृष्ण के विरोध में युद्ध कर नहीं सकते, तो वो कौरवों की ओर से भी युद्ध नहीं कर सकते और पांडवों की ओर से युद्ध इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वह अपने प्रिय जो शिष्य दुर्योधन है उससे के विरोध में भी वो युद्ध नहीं कर सकते। तो मैं युद्ध में तटस्थ रहूँगा, उन्होंने कहा कि मैं युद्ध में तटस्थ रहूँगा क्योंकि जिधर कृष्ण ना हो उस तरफ मेरा रहना ठीक नहीं है। अर्जुन की सहायता मैं करूँगा नहीं, इस कारण मैं अब तुम्हारी भी सहायता करने योग्य नहीं रहा, मेरा तटस्थ रहना ही ठीक होगा। हस्तिनापुर को लौटते हुए दुर्योधन का दिल बहुत खुश था, वह अपने दिल में बहुत खुशी महसूस कर रहा था। वह सोच रहा था कि अर्जुन तो बड़ा बुद्धू बना, द्वारका की इतनी बड़ी सेना अब मेरी हो गई है और बलराम जी का स्नेह प्यार तो मुझ पर पहले से ही है, श्री कृष्ण भी निशस्त्र और सेना विहीन हो गए हैं। यही सोचते विचारते दुर्योधन खुशी खुशी अपनी राजधानी में आ पहुंचा। अर्जुन बोला, बात यह है कि आप वह में वह शक्ति है। श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि आप में वह शक्ति है जिससे आप अकेले ही इस तमाम राजाओं से लड़कर इन्हें कुचल सकते हैं। अर्जुन की बात सुनकर कृष्ण मुस्कराए और बोले, अच्छा यह बात है, और अर्जुन को बड़े प्रेम से विदा किया। इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और पार्थ सारथी की पदवी प्राप्त की। इधर दूसरी ओर मद्र देश के राजा शैल्य, नकुल और सहदेव का जो मामा है, वह भी अपनी बहुत बड़ी सेना लेकर के उपलब्ध नगर की ओर चल पड़ते हैं, और लेकिन रास्ते में वो जहाँ कहीं भी विश्राम करते डेरा डालते वहाँ पर दुर्योधन ने राजा शैल्य की इस विशाल सेना की सहायता पाने के प्रलोभन के कारण उसकी बीच रास्ते में ही उसकी सेना की बड़ी सेवा भगत की और उनके लिए हर तरह का आदर सत्कार किया गया, और इस प्रकार शैल्य भी अपनी इस प्रकार की सेवा देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उनकी सेना जहाँ भी डेरा डाले उसे हर तरह की सुविधाएं दुर्योधन ने पहुँचाई ताकि वह शैल्य को किसी भी प्रकार से अपने और करने के लिए विवश कर दे। उपलब्ध में राजा शैल्य का खूब स्वागत हुआ, लेकिन उससे पहले ही वह दुर्योधन के पक्ष में रहकर युद्ध करने का वचन दुर्योधन को दे चुका था, क्योंकि उन्होंने छल से दुर्योधन ने उनको अपने पक्ष में कर लिया था और उन्होंने उसने वचन भी दे दिया कि मैं युद्ध में आपकी ही सहायता करूँगा। जब शैल्य उपलब्ध नगर पांडवों के पास पहुँचते हैं तो उनको भी इस बात का पता चल जाता है और मामा को आया देखकर नकुल और सहदेव तो प्रारंभ में बहुत खुश होते हैं और उनकी खुशी की कोई सीमा नहीं रहती है। जब भावी युद्ध की चर्चा छिड़ी तो शैल्य ने युधिष्ठिर को सारा हाल बता दिया, दुर्योधन ने धोखा देकर उनको अपने पक्ष में कर लिया है, यह बात भी उन्होंने बता दी। युधिष्ठिर बोला, मामा जी मौका आने पर निश्चय ही महाबली कर्ण आपको अपना सारथी बनाकर अर्जुन का वध करने का प्रयत्न करेगा। मैं यह जानना चाहता हूँ कि उस समय आप अर्जुन की मृत्यु का कारण बनेंगे या अर्जुन की रक्षा का प्रयत्न करेंगे? मैं यह पूछकर आपको असमंजस में नहीं डालना चाहता, फिर भी मेरा पूछने का मन हो गया। मद्रराज शैल ने कहा, बेटा युधिष्ठिर, मैं धोखे में आकर दुर्योधन को वचन दे बैठा हूँ, इसलिए युद्ध तो मुझे उसकी ओर से ही करना होगा। पर एक बात बताए देता हूँ कि कर्ण मुझे सारथी बनाएगा तो अर्जुन के प्राणों की रक्षा ही होगी, ये मैं आपको वचन देता हूँ। उपपलव्य में महाराज युधिष्ठिर और द्रौपदी को मद्रराज शैल ने दिलासा दिया और कहा, जीत उन्हीं की होती है जो धीरज से काम लेते हैं। युधिष्ठिर, कर्ण और दुर्योधन की बुद्धि फिर गई है, अपनी दुष्टता के फलस्वरूप निश्चय ही उनका सर्वनाश होकर रहेगा। इस प्रकार इस मंत्रणा में उन्होंने अपने विचार विमर्श किए, अपने भाई बंधुओं और जो भी राजा महाराजाओं को अपने पक्ष में करने का जो भी योजनाएं हैं वो सभी योजनाएं, उधर कौरव और इधर पांडव अपनी योजनाएं बना रहे हैं। और अभी इस पाठ में बस इतना ही, हम अगली कक्षा में अगले पाठ के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।